सुजीत कुमार की आवाज में अंधा युग, जो कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखित नाटक है, का तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्धशत्य रिकॉर्डिंग होने जा रही है। कथा गायन। संजय का रथ जब नगर द्वार पहुंचा तब रात ढल रही थी। हरी कौरव सेना कब लौटेगी, यह बात चल रही थी। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह, पाकर यह गहन व्यथा गंधारी पत्थर थी। उस श्रीहत मुख पर जीवित मानव सा कोई चिन्ह ना था। दोपहर होते होते हिल उठा नगर, खंडित रथ टूटे छकड़ों पर लदकर थे लौट रहे ब्राह्मण, स्त्रियां, चिकित्सक, विधवाएं, बौने, बूढ़े, घायल, जर्जर। जो सेना रंग बिरंगी ध्वजा उड़ाते रौंदते हुए धरती को गगन कांपती थी गई, युद्ध को 18 दिन पहले उसका यह रूप हो गया आते आते। पर्दा उठता है, प्रहरी खड़े हैं, विदुर का सहारा लेकर धृतराष्ट्र प्रवेश करते हैं। धृतराष्ट्र, देख नहीं सकता हूं पर मैंने छू छू कर अंग भंग सैनिकों को देखने की कोशिश की। बांह के पास से हाथ जब कट जाता है लगता है कैसे जैसे मेरा सिंहासन का हत्था है। विदुर, महाराज यह सब सोच रहे हैं आप? धृतराष्ट्र, कोई खास बात नहीं, सिर्फ मैं संजय के शब्दों से सुनता आया था जिसे आज उसी युद्ध को हाथों से छू छू कर अनुभव करने का अवसर पाया है। इसी बीच एक पंगु गूंगा सैनिक घिसटता हुआ आता है, विदुर के पांव पकड़कर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है, चिल्लू से संकेत कर पानी मांगता है। विदुर चौंक कर, क्या है? ओह प्रहरी, थोड़ा जल लाओ। धृतराष्ट्र, कौन है विदुर? विदुर, एक प्यासा सैनिक है महाराज। सैनिक गूंगी जिन्हवा से जाने क्या क्या कहता है। धृतराष्ट्र, क्या कह रहा है यह? विदुर, कहता है जय हो धृतराष्ट्र की, जिह्वा कटी है महाराज, गूंगा है। धृतराष्ट्र, गूंगे के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय? प्रहरी लाकर जल देता है, गूंगा हाँफने लगता है। प्रहरी, पहला प्रहरी मस्तक छूकर, ज्वर है इसे तो। धृतराष्ट्र, पिला दिया जल इसको, कह दो विश्राम करे इधर कहीं। गूंगा पीछे जाकर आंग मूंद कर पड़ रहता है। वस्त्र इसे दो लाकर माता गंधारी से। प्रहरी, माता गंधारी आज दान गृह में है ही नहीं। विदुर, उनकी आंखों में आंसू भी नहीं है, न शोक है न क्रोध है, जड़वत पत्थर सी हुए बैठी हैं सीढ़ी पर, निपथ में शोरगुल। धृतराष्ट्र, प्रहरी जाकर देखो कैसा है शोर हुआ। प्रहरी जाता है। विदुर, महाराज आप जाएं, जाकर आश्वासन दें माता गांधारी को। धृतराष्ट्र, जाता हूं, संजय भी नहीं है वहां, पता नहीं भीम और दुर्योधन के अंतिम द्वंद्व युद्ध का वह क्या समाचार लाए आज। शोर बढ़ता है। विदुर, महाराज आप जाएं। धृतराष्ट्र दूसरे प्रहरी के साथ जाते हैं, कैसा है शोर यह? प्रहरी लौटता है। प्रहरी, फैल गया है पूरे नगर में अचानक आतंक त्राश। विदुर, क्यों? प्रहरी पहला, अपनी हारी घायल सेना के साथ साथ कोई विपक्षी योद्धा भी चला आया है नगरी में, अस्त्रों से सज्जित है दैत्याकार योद्धा हुआ, जनता कहती है नगरी को लूटेगा। दूसरी प्रहरी लौट आता है। विदुर, छी यह सब मिथ्या है, मैं खुद जाकर उसको देखूंगा, रक्षा करो तुम राजकक्ष की। जाते हैं। प्रहरी दूसरा, क्या तुमने देखा था अपनी आंखों से उसे, योद्धा को? प्रहरी पहला, मायावती है वह, रूप धारण करता है नित नए नए, बंद कर दिया जब रक्षगण ने नगर द्वार, धारण कर रूप एक गृह युद्ध का बंद नगर द्वारों को, ऊपर से उड़कर चला आया और लगा खाने छत पर सोए बच्चों को। प्रहरी दूसरा, बंद करो जल से द्वार पश्चिम के। पहला प्रहरी भय से, वह देखो। दूसरा प्रहरी भय से, क्या है? पहला प्रहरी, वह आया। दूसरा प्रहरी, छिपो इधर छिपो। दोनों पीछे छिपते हैं, एक साधारण योद्धा का प्रवेश। युयुत्सु, टरने में उतनी यातना नहीं है जितनी वह होने में, जिससे सबके वह केवल भय खाते हों। वैसा ही मैं हूँ आज, यह है महल मेरे पिता मेरी माता के, लेकिन कौन जाने यहाँ स्वागत हो मेरा। एक चहर मुझे भाले से, प्रहरी पहला, ये तो युयुत्सु हैं पुत्र धृतराष्ट्र के, युद्ध में लड़े जो युधिष्ठिर के पक्ष में। युयुत्सु, मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पर रहा मैं दृढ़। द्रोण भीष्म सबके सब महारथी नहीं जा सके दुर्योधन के विरुद्ध, फिर भी मैंने कहा पक्ष में असत्य का नहीं लूंगा। मैं भी हूँ कौरव, पर सत्य बड़ा है कौरव वंश से। प्रहरी दूसरा, निश्चय युयुत्सु है, लगता है लौटे हैं घायल सेना के साथ। युयुत्सु, मैं भी सह लेता यदि सब उच्छृंखलता दुर्योधन की, आज मुझे इतनी घृणा तो न मिलती अपने ही परिवार में। माता खड़ी होती बाह फैलाए, चाहे पराजित ही मेरा माथा होता। विदुर आते हैं, ढूंढ रहा हूं कब से तुमको युयुत्सु वत्स। अच्छा किया तुम जो वापस चले आए। प्रहरी जाओ, जाकर माता गंधारी को सूचित करो, पुत्र शोक से पीड़ित माता तुम्हें पाकर शायद दुख भूल जाएं। युयुत्सु, पता नहीं मेरा मुख भी देखेंगी या नहीं। विदुर, ऐसा मत कहो, कौरव पुत्रों की इस कलुषित कथा में एक तुम हो केवल जिसका माथा गर्वोन्नत है। युयुत्सु कटुता से हंसकर, इसीलिए देखकर मुझे आता बंद कर लिए। पट नागरिकों ने सबने कहा वह है मायावी शिशुभक्षी दैत्याकार गृद्धवत। विदुर, इस पर विषाद मत करो युयुत्सु, अज्ञानी भय डुबे साधारण लोगों से यह तो मिलता ही है सदा उन्हें, जो कि एक निश्चित परिपाटी से होकर पृथक अपना पथ अपने आप निर्धारित करते हैं। प्रहरी के साथ गंधारी का प्रवेश। प्रहरी दूसरा, माता गंधारी पधारी हैं। युयुत्सु चरण छूता है, गंधारी निश्चल खड़ी रहती हैं। विदुर, माता ये हैं युयुत्सु, चरण छू रहे हैं, इनको आशीष दो। गंधारी क्षण भर छुप रहकर उपेक्षा से, पूछो विदुर इससे कुशल से हैं। युयुत्सु और विदुर चुप रहते हैं। बेटा, भुजाएं हैं तुम्हारी पराक्रम भरी, थकी तो नहीं अपने बंधुजनों का वध करते करते। चुप, पांडव के शिविरों के वैभव के बाद तुम्हें अपना नगर तो श्रीहत सा लगता होगा। चुप, चुप क्यों हो, थका हुआ होगा यह विदुर, इसे फूलों की शैया दो। कोई पराजित दुर्योधन नहीं है यह, सोए जाकर जो जाकर सरोवर की कीचड़ में। चुप, चुप क्यों है विदुर यह, क्या मैं माता हूं इसके शत्रुओं की, इसलिए जाने लगती है। प्रहरी चलो। विदुर, माता यह शोभा नहीं देता तुम्हें, माता रुकती नहीं चली जाती हैं। युयुत्सु, यह क्या किया माँ ने, यह क्या किया विदुर। सिर झुकाकर बैठ जाता है। अच्छा अच्छा था यदि मैं कर लेता समझौता असत्य से। विदुर, लेकिन वह कोई समाधान तो नहीं था समस्या का, कर लेते यदि तुम समझौता असत्य से तो अंदर से जर्जर हो जाते। युयुत्सु, अब यह माँ की कटुता घृणा प्रजाओं की क्या मुझको अंदर से बल देगी। अंतिम परिणीति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। मुझको क्या मिला विदुर, मुझको क्या मिला। विदुर, शांत हो युयुत्सु और सहन करो, गहरी पीड़ाओं को गहरे में वहन करो। कुछ देर पूर्व से गूंगे के हाँफने की भयावह आवाज आ रही है जो सहसा तेज हो जाती है। प्रहरी पहला, कैसी आवाज है प्रहरी यह, वह गूंगा सैनिक है शायद दम तोड़ा रहा। प्रहरी दूसरा जल लाता है। विदुर, यह लो युयुत्सु, उसे जल दो और स्नेह दो, मर्तों को जीवन दो, झेलो कटुताओं को। युयुत्सु गूंगे के पास जाकर, गोद में रखो सर, मुंह खोलो ऐसे, हाँ खोलो आंखें। गूंगा आँख खोलता है, पानी मुंह से लगाता है, सहसा हुआ चीख उठता है, गिरता पड़ता हुआ घिसटता हुआ भागता है। प्रहरी दूसरा, यह क्या हुआ? युत्सु, मैं ही अपराधी हूँ। यह एक अश्वरोही कौरव सेना का मेरे अग्निवाणों से झुलस गए थे घुटने इसके, नष्ट किया है खुद मैंने जिसका जीवन, वह कैसे अब मेरा ही करुणा स्वीकार करे? मेरी यह परिणति है, स्नेह भी अगर मैं दूं तो वह स्वीकार नहीं औरों को। व्यास ने कहा मुझसे, कृष्ण जिधर होंगे जय भी उधर होगी, जय है यह कृष्ण की जिसमें मैं वधिक हूँ, मातृविंचित हूँ, सबकी घृणा का पात्र हूँ। विदुर, आज इस पराजय की सेवा में पता नहीं जाने क्या झूठा पड़ गया कहाँ, सबके सब कैसे उतर आए हैं अपनी धुरी से आज, एक एक सारे पहिए हैं उतर गए जिससे, वह बिल्कुल निकम्मी धुरी तुम हो, क्या तुम हो प्रभु? सहसा अंतःपुर में भयंकर अर्तनाद। युत्सु, यह क्या हुआ विदुर? विदुर, प्रहरी जरा देखो तुम। पहला प्रहरी जाकर तुरंत लौटता है। पहला प्रहरी, संजय यह समाचार लाए हैं। विदुर आकुलता से, क्या? युत्सु, पहला प्रहरी, द्वंद युद्ध में राजा दुर्योधन पराजित हुए हैं। विदुर और युत्सु झपट कर जाते हैं। अर्तनाद बढ़ता है, पीछे से कोई घोषणा करता है, राजा दुर्योधन पराजित हुए। पीछे का पर्दा उठने लगता है, पांडवों की समवेत हर्ष ध्वनि और जयकार सुन पड़ती है, वनपथ का दृश्य, धनुष चढ़ाए भागते हुए कृतवर्मा का कृपाचार्य आते हैं। कृतवर्मा, यहीं कहीं छिप जाओ कृपाचार्य, शंख ध्वनि करते हुए जीते हुए पांडवगण लौट रहे हैं अपने शिविरों को। कृपाचार्य, ठहरो, उठाओ धनुष, वह आ रहा है कौन? कृतवर्मा, नहीं नहीं, वह अश्वत्थामा है, छद्म वेश धारण कर देखने गया था युद्ध दुर्योधन भीम का। अश्वत्थामा का प्रवेश, अश्वत्थामा, मातुल सुनो, मारे गए राजा दुर्योधन अधर्म से। कृपाचार्य, चुप रहने का संकेत कर, छिप जाओ, पांडवों से होकर पृथक। क्रोधित बलराम इधर आते हैं। कृतवर्मा निपथ की ओर देखकर, कृष्ण भी हैं उनके साथ? कृपाचार्य, सुनो, ध्यान देकर सुनो। बलराम, केवल निपथ से नहीं, नहीं नहीं, तुम कुछ भी कहो कृष्ण, निश्चय ही भीम ने किया है अन्याय, आज उसका अधर्म वार अनुचित था। कृपाचार्य, जाने क्या समझा रहे हैं कृष्ण। बलराम निपथ स्वर, पांडव संबंधी हैं तो क्या कौरव शत्रु थे? मैं तो आज बता देता भीम को, पर तुमने रोक दिया। जानता हूं मैं तुमको शैशव से, रहे हो सदा मर्यादाहीन कूट बुद्धि। कृपाचार्य, धनुष रखते हुए, उधर मुड़ गए दोनों। बलराम निपथ स्वर दूर जाता हुआ, जाओ हस्तिनापुर, समझाओ गांधारी को, कुछ भी करो कृष्ण, लेकिन मैं कहता हूँ सारी तुम्हारी कुटी बुद्धि और प्रभुता के बावजूद। शंख ध्वनि करते हुए अपने शिविरों को जाते हैं पांडवगण, वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। अश्वत्थामा दोहराते हुए, वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। कृपाचार्य वत्स, किस चिंता में लीन हो? अश्वत्थामा, वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से, सोच लिया मातुल मैंने, बिल्कुल सोच लिया, उनको मैं मारूंगा, मैं अश्वत्थामा उन नीचों को मारूंगा। कृतवर्मा व्यंग से, जैसे तुमने मारा था वृद्ध याचक को। अश्वत्थामा चिढ़कर, हाँ बिल्कुल वैसे ही, जब तक निर्मूल नहीं कर दूंगा मैं पांडव वंश को। कृतवर्मा, लेकिन अश्वत्थामा पांडव पुत्र बूढ़े नहीं हैं, निहत्ते भी नहीं हैं, अकेले भी नहीं हैं, खत्म हो चुका है यह लज्जाजनक युद्ध, अपनी अधर्म युक्त उज्जवल वीरता कहीं और आजमाओ, हे पराक्रम सिंधु। अश्वत्थामा, प्रस्तुत हूं उसके लिए भी मैं। कृतवर्मा, व्यंग मत बोलो, उठाओ शस्त्र, पहले तुम्हारा करूंगा वध, तुम जो पांडवों के हितैषी हो। कृपाचार्य डांटकर, अश्वत्थामा रख दो शस्त्र, पागल हुए हो क्या? कुछ भी मर्यादा बुद्धि तुम में क्या शेष नहीं? अश्वत्थामा, सुनते हो पिता, मैं इस प्रतिहंसा में बिल्कुल अकेला हूं, तुमको मारा दृष्टि द्युम्न ने अधर्म से, भीम ने दुर्योधन को मारा अधर्म से, दुनिया की सारी मर्यादा बुद्धि केवल इस निपट अनाथ अश्वत्थामा पर ही लादी जाती है। कृपाचार्य बैठो, इधर बैठो वत्स, हम सब हैं तुम्हारे साथ इस प्रतिहंसा में, किंतु यदि छिपकर आक्रमण के सब सिवा कोई दूसरा पथ निकल आए। अश्वत्थामा, दूसरा पथ? पांडवों ने क्या कोई दूसरा पथ छोड़ा है? पांडवों की मर्यादा मैंने आज देखी द्वंद युद्ध में, कैसे अधर्म युक्त वार से दुर्योधन को नीचे गिरा दिया भीम ने। टूटी जांघों, टूटी कोहनी, टूटी गर्दन वाले दुर्योधन के माथे पर रखकर पांव पूरा बोझ डाले हुए भीम ने बाहें फैलाकर पशुवत घोर नाद किया। कैसे दुर्योधन की दोनों कनपटियों पर दो दो नसें सहसा फूली और फूट गई, कैसे होंठ खींच आए, टूटी हुई जांघों में एक बार हरकत हुई, आंखें खोल दुर्योधन ने देखा अपनी प्रजाओं को। कृपाचार्य बस करो अश्वत्थामा, शायद तुम्हारा ही पथ एकमात्र संभव पथ है। अश्वत्थामा, मातुल फिर तुमको शपथ है, मत देर करो, शायद अभी जीवित है दुर्योधन, उनके सम्मुख मुझको घोषित कर दो तुम सेनापति, मैं पथ ढूंढूंगा प्रतिशोध का। कृपाचार्य चलो कृतवर्मा, तुम भी चलो। कृतवर्मा, नहीं मुझे रहने दो, जाओ तुम। कृपाचार्य अश्वत्थामा जाते हैं, कृतवर्मा चले गए दोनों। कायर नहीं हूं मैं, दुख है मुझे भी दुर्योधन की हत्या का, किंतु यह कैसा विभत आडंबर है, हड्डी हड्डी जिसकी टूट गई है वह हारा हुआ दुर्योधन करेगा नियुक्त इस पागल को सेनापति, जिसकी सेना में है शेष बचे केवल दो, बूढ़े कृपाचार्य और कायर कृतवर्मा। यह है अक्षौहिणी कौरव सेना की परिणति, जाने दो कृतवर्मा, मौन रहो, पक्ष लिया है दुर्योधन का तो अपनी अंतिम सांसों तक निर्वाह करो। अकेले कृपाचार्य का प्रवेश, आगे कृपाचार्य। कृपाचार्य देख नहीं सका मैं, और देर तक वह भयानक दृश्य, कोटर से झांक रहे थे दो खूंखार गिद्ध, इस झाड़ी से उस झाड़ी में थे घूम रहे गीदड़ और भेड़िए, जीभें निकाले लोलुप नेत्रों से देखते हुए अपलक राजा दुर्योधन को। कृतवर्मा व्यंग से, फिर कैसे सेनापति अश्वत्थामा का अभिषेक हुआ? कृपाचार्य बोले हुए, कृपाचार्य तुम हो विप्र, यहां जल नहीं है, तुम स्वयं जल से ही कर दो अभिषेक वीर अश्वत्थामा का, कैसे उठाऊं हाथ अपने आशीष को, झूल गई हैं बाहें कंधों के पास से, मैंने निर्जीव हाथ उनका उठाया आशीर्वाद मुद्रा में, किंतु घोर पीड़ा से आशीर्वाद के बजाय हृदय विदारक स्वर में वे चीख उठे। अश्वत्थामा प्रवेश करते हुए, पर जीवित रहेंगे वे, उन्होंने कहा है, अश्वत्थामा जब तक प्रतिशोध का न दोगे संवाद मुझे, तब तक जीवित रहूंगा मैं, चाहे मेरे अंग अंग ये सारे वन पशु चबा जाएं। सुनते हो कृतवर्मा, कल तक मैं लूंगा प्रतिशोध, सेना यदि छोड़ जाए तभी अकेला मैं। कृतवर्मा लौटते हुए, मैं भी तुम्हारे साथ सेनापति। उबकी जमुआई। कृपाचार्य अब तो कम से कम विश्राम हमें करने दो। अश्वत्थामा नए स्वर में, सो जाओ आज रात सैनिकगण, कल सेनापति अश्वत्थामा बतलाएगा तुमको क्या करना है। कृतवर्मा कृपाचार्य विश्राम करते हैं, अश्वत्थामा धनुष लेकर पहरा देता है। अश्वत्थामा कितना सुनसान हो गया है वन, जाग रहा हूँ केवल मैं ही, यहाँ इमली के बरगद के पीपल के पेड़ों की छायाएं सोई हैं। धीरे धीरे स्टेज पर अंधेरा होने लगता है, वन में सियारों का रोदन, पशुओं के भयानक स्वर बढ़ते हैं, स्टेज पर बिल्कुल अंधेरा, केवल अश्वत्थामा के टहलते हुए आकार का भास होता है, सहसा कर्कश कौए का स्वर और दाईं ओर से बिल्कुल काले काले कपड़े पहने कौए की मुखाकृति का एक नर्तक शिशु आता है, पंख खोलकर मंडराता है और दो बार स्टेज पर चक्कर लगाकर घुटनों के बल झुककर कंधों पर चिबुक रखकर पक्षियों की सोने की मुद्रा में बैठ जाता है। इस बीच में अश्वत्थामा पर बिल्कुल प्रकाश नहीं पड़ता, एक नीली प्रकाश रेखा इसी पर पड़ती है, फिर स्वर तेज होता है और बाईं ओर बिल्कुल श्वेत वसंधारी एक उलूका कृति वाला तेज पंजों वाला नृतक शिशु आता है, कौए को देखता है, सावधान होता है, फिर उल्लसित होकर पंजे तेज करता है, पंख फड़फड़ाता है, फिर नई मुद्राओं में बराबर आक्रमण करने का अभिनय करता है। एक प्रकाश अश्वत्थामा पर भी पड़ता है, जो स्तब्ध कौतूहल से इस घटना को देख रहा है। कौवा एक बार अलसाई करवट लेता है और उलूक को देखकर भी बिना ध्यान दिए सो जाता है। उलूक पहले सहम जाता है, उसे सोया देखकर दो एक बार सावधानी से आजमाता है कि कहीं कौवा सोने का नाट्य तो नहीं कर रहा है। फिर सहसा उस पर टूट पड़ता है भयानक रव, कोलाहल, चित्कार, दोनों गूंधे रहते हैं, बिल्कुल अंधकार, फिर प्रकाश। कौए के कुछ छोटे हुए पंख और उलूक के पंजे रक्त में लथपथ। उलूक उन पंखों को उठाकर नृत्य करता है बदहोल्लास का तांडव। एक प्रकाश अश्वस्थामा पर सहसा उनकी उसकी मुखाकृति बदलती है और वह जोर से अट्ठास कर पड़ता है। उलूक घबरा कर रुक जाता है, देखता है अश्वस्थामा अट्ठास करता हुआ उसकी ओर बढ़ता है। उलूक कटे पंख उसकी ओर फेंक कर भागता है। अश्वस्थामा कटा पंख हाथ में लेकर उल्लास से चीखता है, अश्वस्थामा मिल गया मातुल, मुझे मिल गया। प्रकाश होता है वह रक्त सना कटा पंख हाथ में लिए उछल रहा है। दोनों योद्धा चौंक कर उठते हैं और कृतवर्मा घबरा कर तलवार खींच लेता है। कृपाचार्य, मिल गया क्या, मिल गया वत्स? अश्वस्थामा, मातुल सत्य मिल गया बर्बर अश्वस्थामा को। कृतवर्मा, यह घायल कटा पंख? अश्वस्थामा, जैसे युधिष्ठिर का अर्ध सत्य घायल और कटा हुआ। कृपाचार्य, कहाँ जा रहे हो तुम? अश्वस्थामा, पांडव शिविर की ओर, निंद में निहत्थे अचेत पड़े होंगे सारे विजयी पांडवगण। अपना कमरबंद कसता है कृपाचार्य, अभी? अश्वस्थामा, बिल्कुल अभी, वे सब अकेले हैं, कृष्ण गए होंगे हस्तिनापुर गांधारी को समझाने, इससे अच्छा अवसर आखिर मिलेगा कब? कृतवर्मा, यह सेनापति का आदेश है। अश्वस्थामा, बिना सुने, तुमने कहा था नरों व कुंजरों वा कुंजर की भांति मैं केवल पदाघातों से चूर करूंगा धृष्ट द्युम्न को, पागल कुंजर से कुचली कमल कली की भांति छोड़ूंगा नहीं उत्तर को उत्तरा को भी, जिसमें गर्भित है अभिमन्यु पुत्र पांडव कुल का भविष्य। कृपाचार्य, नहीं नहीं नहीं, यह मैं नहीं होने दूंगा। अश्वस्थामा, होकर रहेगा यह, साथ नहीं दोगे तो अकेले मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। कृतवर्मा पीछे पीछे सिर झुकाए जाता है। कृपाचार्य, रुको, किंतु सोचो। अश्वस्थामा, अश्वस्थामा बिना सुने चला जाता है। कृपाचार्य पीछे पीछे पुकारते हुए जाते हैं, अश्वस्थामा अश्वस्थामा अश्वस्थामा। यह ध्वनि धीरे धीरे दिगंत में खो जाती है। तीनों रथों की घरघराहट और घोड़ों की टापें शेष बजती हैं, पर्दा गिरता है। अंतराल, पंख, पहिए और पट्टियां। वृद्ध याचक प्रवेश करता है स्टेज पर, मकड़ी के जाले जैसी प्रकाश रेखाएं और कुछ कुछ प्रेत लोक सा वातावरण। पहले मैं झूठा भविष्य था, वृद्ध याचक था, अब मैं प्रेतात्मा हूं। अश्वस्थामा ने मेरा वध किया था, जीवन एक अनवरत प्रवाह है और मौत ने मुझे बांह पकड़कर किनारे खींच लिया है, और मैं तटस्थ रूप से किनारे पर खड़ा हूं और देख रहा हूं कि यह युग का अंधा समुद्र है, चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ और दर्रों से और गुफाओं से उमड़ते हुए भयानक तूफान चारों ओर से उसे मथ रहे हैं, और उस बहाव में मंथन है, गति है, किंतु नदी की तरह सीधी नहीं, बल्कि नागलोक के किसी गह्वर में सैकड़ों केंचुले चढ़े अंधे सांप एक दूसरे से लिपटे हुए आगे पीछे ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े रेंग रहे हों, उसी तरह सैकड़ों धड़ाएं उपधाराएं अंधे सांपों की तरह बिलबिला रही हैं। ऐसा है यह अंधा समुद्र जिसे हम आज का भव प्रवाह कह सकते हैं। और कुछ सफेद केंचुल ऊपर तैर आए हैं, सफेद पट्टियां गांधारी की आंखों पर है, सैनिकों के जख्मों पर है। मैंने अपनी प्रेत शक्ति से सारे प्रवाह को, कथा की गति को बांध दिया है, और सब पात्र अपने स्थान पर स्थिर हो गए हैं, क्योंकि मैं चीर फाड़ कर हरेक की आंतरिक असंगति समझना चाहता हूँ। ये हैं वे पात्र, मेरी मंत्र शक्ति से परिचालित हैं वे, छाया रूप में आते हैं। युयत्सु, विधुर, संजय यांत्रिक गति से मंच के आर पर मंत्रगुप्त मुग्ध से आते हैं और फिर वृद्ध के पीछे एक पंक्ति में खड़े हो जाते हैं और फिर एक एक कर आगे बढ़कर बोलते हैं और फिर पीछे अपने स्थान पर चले जाते हैं। मैं हूँ युयुत्सु, मैं उस पहिए की तरह हूँ जो पूरे युद्ध के दौरान रथ में लगा था, पर जिसे अब लगता है कि वह गलत धुरी में लगा था और मैं अपनी उस धुरी से उतर गया हूँ। मैं संजय हूँ जो कर्म लोक से बहिष्कृत हूँ है। मैं दो बड़े पहियों के बीच लगा हुआ एक छोटा निरर्थक शोभा चक्र हूँ जो बड़े पहियों के साथ घूमता है पर रथ के साथ क्या को आगे में नहीं बढ़ाता और न धरती को ही छू पाता है, और जिसके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वह धुरी से उतर भी नहीं सकता। मैं विदुर हूँ, कृष्ण का अनुगामी भक्त और नीतिज्ञ, पर मेरी नीति साधारण स्तर की है और युग की सारी स्थितियां असाधारण हैं, और अब मेरा स्वर संशय ग्रस्त है क्योंकि लगता है कि मेरे प्रभु उस निकम्मी धुरी की तरह हैं जिसके सारे पहिए उतर गए हैं और जो खुद घूम नहीं सकती पर संशय पाप हैं और मैं पाप नहीं करना चाहता। निपथ में घंटियों की ध्वनि और एक मोरपंख उड़ता हुए स्टेज पर गिरता है। वृद्ध उसे उठाकर कहता है, यह क्या है मोरपंख? गांधारी को आश्वासन देकर हस्तिनापुर से लौटते हुए कृष्ण के किरीट से लगता है यह पंख गिर पड़ा है। सुनकर, हाँ यह उन्हीं के रथ की घंटियां हैं, रोक लो उनका रथ, जैसे रोक दिया है प्रवाह मैंने कथा का। सम्मोहन की असफल चेष्टा कर, नहीं, उनमें सारे समय के प्रवाह की मर्यादा बंध जाती है, बांध नहीं सकता हूं उनको मैं। हाँ यह दूसरा रथ जिसकी गति को मैं तो क्या कृष्ण भी रोक नहीं पाए हैं, यह रथ है मेरे वधिक अश्वत्थामा का। कौए के कटे पंख सी काली रक्त रंगी घृणा है भयानक उसकी अदम्य, मोर पंख उससे हारेगा या जीतेगा, घृणा के उस नए कालिए नाक का दमन अब क्या कृष्ण कर पाएंगे। रथ की ध्वनियां तेज होती हैं, रथ बढ़ते जाते हैं। मैं हूं अशक्त, कथा की गति अब मेरे बांधे नहीं बनती है, कृष्ण का रथ पीछे छूट जाता है। अंधियारे में वह देखो अश्वत्थामा का रथ पांडव शिविर में पहुंच गया। आह यह है कौन? विराट काय दैत्य पुरुष अंधकार में अश्वत्थामा के सम्मुख काली चट्टानों सा पड़ा हुआ इस तरह घबरा कर हथेलियों से आंखें बंद कर लेता है जैसे वह बहुत कुछ भयानक देख रहा है। निपथ से भयानक गर्जन। चौथा अंक, गांधारी का शाप। कथा गायन। वे शंकर थे वे रौद्र वेशधारी विराट, प्रलयंकर थे जो शिविर द्वार पर दिखे, अश्वस्थामा को अनगिनत विष भरे शाप, भुजाओं पर बांधे वे रोम रोम में अगणित महाप्रलय साधे, जो शिविर द्वार पर दिखे अश्वस्थामा को। बोले हुए जैसे प्रलय में गर्जन स्वर, मुझको पहले जीतो तब जाओ अंदर, युद्ध किया अश्वस्थामा ने पहले, है और कौन जो दिव्य शास्त्रों को सहले, शर शक्ति प्राश नराच गदाएं सारी, लोक क्रोधित हो अश्वस्थामा ने मारी, वे उनके एक रोम में समा गई सब, वह हार मान बंदना लगा करने तब, जटाकटास सम्र मणि लिम्पी निर्धरी समा, विलोल विचि वलड़ी विराजमान मर्धनी, धग दुग द्वग ज्वलाहट पट पावके, किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षण मम। वे आशुतोष हैं, हाथ उठाकर बोले, अश्वस्थामा तुम विजयी होगे निश्चय, हो चुका पांडवों के पुण्यों का अब क्षय, मैं कृष्ण प्रेम वश अब तक इनकी रक्षा करता था, मैं विजय दिलाता था, इनमें नया पराक्रम भरता था, पर कर अधर्म वध्य द्वार उन्हें स्वतः मृत्यु के खोले। वे आशुतोष हैं, हाथ उठाकर बोले। पर्दा उठने पर गंधारी बैठी हुई दिख पड़ती है और विदुर तथा संजय इस मुद्रा में खड़े हैं जैसे वार्तालाप पहले से चल रहा हो। गंधारी, फिर क्या हुआ? संजय, फिर क्या हुआ? संजय पाठ करते हुए। शंकर की दैवी असी लेकर अश्वस्थामा जा पहुंचा योद्धा दृष्टिद्युम्न के सिरहाने बिजली सा झपट खींचकर शैया के नीचे घुटनों से दाब दिया उसको, पंजों से गला दबोच लिया, आंखों के कोटर से दोनों साबुत गोले कच्चे आमों की गुठली जैसे उछल गए, खाली गड्ढों से काला लहू उबल पड़ा। कंधारी, अंधा कर दिया उसको पहले ही, कितना दयालु है अश्वस्थामा। संजय, बड़े कष्ट से जोड़ जोड़ कर शब्द कहा उसने, वध करना है तो अस्त्रों से कर दो, तुम योग्य नहीं हो उसके नरपशु दृष्टिद्युम्न, तुमने निःशस्त्र द्रोण की कायर हत्या की, यह बदला है, फिर चूर चूर कर दिए ठोकरों से उसने मर्मस्थल। विदुर, बस करो। गंधारी, फिर क्या हुआ। संजय, कुलाहल सुन जो अस्त व्यस्त योद्धा जागे, आंखें मलते बाहर आए, उनको क्षण भर में गिरा दिया तीखे जहरीले तीरों से, शतानिक को कुछ नहीं मिला तो पहिए से ही वार किया, अश्वस्थामा ने काट दिए उसके घुटने, सोया था दूर शिखंडी उसके पास पहुंचकर माथे के बीचों बीच एक बाण मारा जो मस्तक फाड़ चीरता हुआ चंदन शैया को धरती के अंदर समा गया। कांधारी, फिर क्या हुआ। संजय, विदुर, हृदय तुम्हारा पत्थर का है। गांधारी, गांधारी, पत्थर की खान से मणियां निकलती हैं, बाधा मत डालो विदुर। संजय, फिर। विदुर, संजय नहीं, मुझसे सुनो, कितनी जघन्य वह प्रतिहंसा थी, कृपाचार्य कृतवर्मा बाहर थे, जितने बच्चे बूढ़े नौकर बाहर भागे, वाणों से छेद दिया उनको कृतवर्मा ने, डरे हुए हाथी चिघाड़ कर शिविरों को चीरते हुए भागे, शैया पर सोई हुई स्त्रियां जहां थी वहीं कुचल गईं, उसी समय उन दोनों वीरों ने पांडव शिविरों में लगा दी आग। कंधारे, काश कि मैं अपनी आंखों से देख पाती यह कैसी ज्योति से घिरा होगा तब अश्वस्थामा। संजय, धुआं लपट लोन थे, घायल घोड़े, टूटे रथ, रक्त मेद मज्जा मुंड, खंडित कमंधों में, टूटी पसलियों में विचरण करता था अश्वस्थामा, सिंहनाद करता हुआ नर रक्त से वह तलवार उसके हाथों में चिपक गई थी ऐसे जैसे वह उगी हो उसके उसी के भुज मूलों से। गांधारी, ठहरो। संजय, ठहरो, दिव्य दृष्टि से मुझको दिखला दो एक बार वीर अश्वस्थामा को। संजय, माता, वह क्रूप है, भयंकर है। गांधारी, किंतु वीर है, उसने वह किया है जो मेरे 100 पुत्र नहीं कर पाए, द्रोण नहीं कर पाए, भीष्म नहीं कर पाए। संजय, माता, व्यास ने मुझको दिव्य दृष्टि दी थी केवल युद्ध की अवधि के लिए, पता नहीं कब वह सामर्थ्य मुझसे छिन जाए। गांधारी, इसीलिए कहती हूँ अन्यायी कृष्ण इसके बाद अश्वस्थामा को जीवित नहीं छोड़ेंगे, देखने दो मुझको उसे एक बार। संजय, मैं प्रयास करता हूँ, मेरे सारे पुण्यों का बल संवेद होकर दर्शन कराएगा आपको अश्वस्थामा के। ध्यान करता है, दीवार हट जाओ, राह में जो बाधाएं दृष्टि रोकती हों वे माया से सिमट जाएं, दूरी मिट जाएं, क्षितिज रेखा के पार दृष्टि से छिपे हैं वे जो दृश्य वे निकट आ जाएं, पीछे का पर्दा हटने लगता है, आगे के प्रकाश बुझने लगते हैं, अंधेरा है, यह वह स्थल है जहां मरणासन दुर्योधन कल तक पड़ा था, अस्त्र शस्त्र लिए हुए कौन ये दोनों योद्धा आए, ये हैं कृपाचार्य कृतवर्मा, पीछे दूर से हुए अंधेरे में पुकारते हैं, महाराज दुर्योधन, महाराज दुर्योधन। कृपाचार्य, कृतवर्मा ज्योतिवाण फेंको, कुछ तिमिर घटे। कृतवर्मा निपथ की ओर देखकर, वे हैं महाराज, निश्चय ही अर्धमृत दुर्योधन को खींच ले गए हैं हिंसक पशु उस झाड़ी में। कृपाचार्य, जीवित हैं अभी, होठ हिलते से लगते हैं। कृतवर्मा, समझ नहीं पड़ता है, मुख से बह बह कर रक्त काले काले थक्कों से जमा हुआ है चारों ओर, हलक भी जमी होगी। कृपाचार्य, रुक रुक कर, जरा जोर से, महाराज, सेनापति अश्वस्थामा ने ध्वस्त कर दिया है पूरे पांडव शिविर को, आज शेष नहीं बचा एक भी योद्धा। कृतवर्मा, महाराज के मुख पर आभा संतोष की झलक आई। कृपाचार्य, पलकें भी खोल ली। कृतवर्मा, ढूंढ रहे हैं किसे, शायद अश्वस्थामा को। कृपाचार्य, महाराज, अश्वस्थामा अपने ब्रह्मशास्त्र और मणि लेने गया है, उसे लेकर हम तीनों घोर वन में चले जाएंगे। कृतवर्मा, महाराज की आंखों से बह रहे अश्रु गांधारी और संजय पर प्रकाश पड़ता है। संजय, यह क्या माता, पट्टी उतारे ही नहीं तुमने? वह देखो आया अश्वत्था माँ। कंधारी, नहीं नहीं नहीं, देख नहीं पाऊंगी, किसी भी तरह मैं मरणोन्मुख दुर्योधन को रहने दो संजय, यह पट्टी बंधी है, बंधी रहने दो, मुझको बताते जाओ क्या हो रहा है वहाँ। विदुर, कुछ भी नहीं दिख पड़ा रहा है मुझे। संजय, अश्वस्थामा आ गया है पर शीश झुकाए है, बिल्कुल चुप है। आगे का प्रकाश पुनः बुझ जाता है। कृपाचार्य, महाराज आपका अश्वस्थामा आ गया, हाथ उठा सकता है नहीं, एक बार दृष्टि उठाकर दे दें आशीष इसे। अश्वस्थामा, नहीं स्वामी नहीं, मैं अब भी अनधिकारी हूँ, मैंने प्रतिशोध ले लिया दृष्टिद्युम्न से पिता की पाप हत्या का, किंतु अब भी आपका प्रतिशोध नहीं ले पाया, शेष है अभी भी, सुरक्षित है उत्तरा, जन्म देगी जो पांडव उत्तराधिकारी को, किंतु स्वामी अपना कार्य पूरा करूंगा मैं। सूर्यलोक में जब द्रोण से मिले आप कहे। कृतवर्मा, किससे कहते हो? अश्वस्थामा, किससे कहते हो? महाराज नहीं रहे। शोक सूचक संगीत। कृपाचार्य विह्वल होकर मुंह ढक लेते हैं। आगे गंधारी चीखकर मूर्छित हो जाती है। अश्वस्थामा, किसका चित्कार है यह? माता गंधारी, मैं कहता हूँ धैर्य धरो, जैसे तुम्हारी कुख कर दी है पुत्रहीन कृष्ण, वैसे ही मैं भी उत्तरा का कर दूंगा पुत्रहीन, जीवित नहीं छोड़ूंगा उसको मैं, कृष्ण चाहे सारी योग माया से रक्षा करे। पीछे का पर्दा गिरने लगता है। गंधारी, संजय संजय, मेरी पट्टी उतार दो, देखूंगी मैं अश्वस्थामा को, वज्र बना दूंगी उसके तन को। संजय, लो मैंने यह पट्टी उतार फेंकी, कहाँ है अश्वस्थामा? पीछे का पर्दा बिल्कुल बंद हो जाता है। संजय, यह क्या हुआ माता? अब तक जो दिव्य दृष्टि से था मैं देख रहा, सहसा उस पर एक पर्दा सा छा गया। गंधारी, जल्दी करो, आंसू न गिर पाए। संजय, दीवारों हट जाओ, दीवारों हट जाओ, माता माता, मेरी दिव्य दृष्टि को क्या हो गया आज? दीवारों दीवारों, आगे नहीं खुलती हैं, आंखें नहीं खुलती हैं, अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है? विदुर, संजय, तुमको देख नहीं पड़ता क्या वन या दुर्योधन या? संजय, नहीं विदुर, केवल दीवारें दीवारें दीवारें। विदुर, सब समाप्त होने की जैसी यही एक बेला है। गंधारी जड़ बैठी हैं। संजय, व्यास, क्यों मुझको देव दृष्टि दी थी? थोड़ी सी अवधि के लिए आज से कभी भी इस सीमित दृश्य जगत से मैं तृप्ति नहीं पाऊंगा, सीमाएं छोड़कर अंत में समाहित होने को प्यासी मेरी आत्मा रहेगी सदा। विदुर, माता उठो, छोड़ो हस्तिनापुर को, चलकर संपत पंचक अंतिम संस्कार करो अपने कुटुंबियों को। संजय, सब बांधवों से कह दो, परिजनों से कह दो, आज ही करेंगे प्रस्थान युद्ध भूमि को। संजय जाते हुए, 18 दिनों का लोम हर्षक संग्राम यह मुझको दृष्टि देकर और लेकर चला गया। युत्सु का प्रवेश। विदुर, चलो माता, महाराज को बुला लो। युत्सु, तुम भी चलो। युत्सु, जिसने किया हो खुदवध उसकी अंजलि का तर्पण स्वीकार किसे होगा भला? वे मेरे बंधु हैं, मेरे परिजन, किंतु सुनो कृष्ण, आज मैं किस मुंह से उनका तर्पण करूंगा। सब जाते हैं। पीछे का पर्दा धीरे धीरे उठता है। कथा गायन। वे छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन, वे छोड़ चले वह रत्न जटित सिंहासन, जिसके पीछे था युद्ध हुआ इतने दिन, सुनी रहे चौराहे या घर आंगन, जिस स्वर्ण कक्ष में रहता था दुर्योधन, उसमें निर्भय वन पशु करते थे विचरण, वे छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन, करने अपने 100 मृत पुत्रों का तर्पण, आगे रथ पर कौरव विधवाओं को ले, है चली जा चुकी कौरव सेना सारी, पीछे पैदल आते हैं शीश झुकाए, धृतराष्ट्र युत्सु विदुर संजय गांधारी। क्रम से धृतराष्ट्र युत्सु विदुर संजय और गांधारी धीरे धीरे चलते हुए ऊपर आते हैं। धृतराष्ट्र एक बार लड़खड़ाते हैं। धृतराष्ट्र, वृद्ध है शरीर और जड़ जड़ है, चला नहीं जाता। विदुर, संजय तनिक रोको। महाराजा बैठ जाते हैं, सब रुक जाते हैं। युत्सु, किसके हैं रथ वे उधर झाड़ी में छिपे छिपे? संजय, वे तो हैं कृपाचार्य। विदुर, इधर कृतवर्मा है? गांधारी, संजय क्या अश्वस्थामा? विदुर, हाँ माता वह है अश्वस्थामा। धृतराष्ट्र, जाने दो गांधारी, रोको उसे। संजय, रोको, रुको, आ ओ रुको अश्वस्थामा, हम हैं संजय माता गांधारी महाराज, संग हैं हमारे विदुर और युत्सु। धृतराष्ट्र, संजय मत नाम लो युत्सु का, क्रोधित अश्वस्थामा जीवित नहीं छोड़ेगा, मेरा है केवल एक पुत्र शेष, खोकर उसे कैसे जीवित रहूंगा। गांधारी, और जब पुत्र वह पराक्रमी यशस्वी है? संजय, चलो यहीं रहने दो युत्सु को, पुत्र कहीं छिप जाओ, प्राण जाओ बचाओ, अब तुम ही हो आश्रय अपने अंधे पिता वृद्ध माता के। संजय के साथ जाती है युत्सु, यह सब मैं सुनूंगा और जीवित रहूंगा, किंतु किसके लिए, किंतु किसके लिए? धृतराष्ट्र, मेरे अंधेपन से तुम थे उत्पन्न पुत्र, वही थी तुम्हारी परिधि, उसका उल्लंघन कर तुमने जो ज्योतिवृत्त में रहना चाहा। विदुर, क्या वह अपराध था? कंधारी और संजय लौट आते हैं। धृतराष्ट्र, आ गए संजय तुम? संजय, अश्वस्थामा तो बिल्कुल बदला हुआ सा है, वह वीर नहीं, वह तो जैसे भय की प्रतिमूर्ति है, रह रह कहाँ पुकता है, रथ की बलगाएं हाथों से छूट जाती हैं। दूर कहीं शंख ध्वनि। गांधारी, पागल है, कहता है मैं वलकल धारण कर रहूंगा तपोवन में, डरता है कृष्ण से। पुनः कई विस्फोट और एक अलौकिक प्रकाश। संजय, पांडवों को लेकर साथ कृष्ण आ रहे हैं उसकी खोज में। गांधारी, मार नहीं पाएंगे कृष्ण उसे, मैंने उसे देखकर वज्र कर दिया उसके तन को। दूर कहीं विस्फोट। विदुर, लगता है ढूंढ लिया प्रभु ने उसे। धृतराष्ट्र, संजय तो देखो जरा। संजय, मेरी दिव्य दृष्टि वापस ले ली है व्यास ने। युत्सु, यह तो प्रकाश है अर्जुन के अग्निवाण का। विदुर, झुलस झुलस कर गिर रही है वनस्पतियां, बुझे हुए दो अग्निवाण मंच पर गिरते। धृतराष्ट्र, संजय दूर निकल जाओ इस क्षेत्र से। गांधारी, किंतु कृष्ण तुमने अनिष्ट यदि किया अश्वस्थामा का। सुलगते हुए बाण फिर गिरते हैं। विदुर, माता चलो, सुरक्षित नहीं है यहाँ, गिर रहे हैं जलते वाण यहाँ। जाते हैं, कुछ क्षण स्टेज खाली रहता है। नेपथ्य में शंखनाद लगातार विस्फोट, तीव्र प्रकाश। अकस्मात दौड़ता हुआ अश्वस्थामा आता है, उसके गले में वाण चुभा हुआ था, खींच कर वाण निकलता है और रक्त बह निकलता है। इतने में दूसरा वाण आता है जिसे वह बच जाता है और फिर तन कर खड़ा हो जाता है क्रोध से रक्त मुक्त। अश्वस्थामा, रक्षा करो अपनी, अब तुम अर्जुन, मैंने तो सोचा था वलकल धारण कर रहूंगा तपोवन में, पूरे पांडव को निर्मूल किए बिना शायद युद्ध लिप्सा नहीं शांत होगी कृष्ण की। अच्छा तो यह लो अर्जुन, स्मरण करो अपने विगत कर्म, इसके प्रभाव को, इसके प्रभाव को। एक क्या करोड़ कृष्ण मिटा नहीं पाएंगे। सुनो तुम सब नभ के देवगण, अपने अपने विमानों पर आरूढ़ देख रहे हो जो इस युद्ध को, साक्षी रहोगे तुम, विवश किया है मुझे अर्जुन ने। यह लो, यह है ब्रह्मास्त्र। कोई काल्पनिक वस्तु फेंकता है ज्वालामुखियों की सी गड़बड़ाहट, तेज महतावी सा प्रकाश, फिर अंधेरा। व्यास, आकाशवाणी, यह क्या किया अश्वस्थामा नराधाम, यह क्या किया अश्वस्थामा, कौन दे रहा है अपनी मृत्यु को निमंत्रण मेरे प्रतिशोध में बाधक बनकर। व्यास, मैं हूं व्यास, ज्ञात क्या तुम्हें है परिणाम इस ब्रह्मशास्त्र का? यदि यह लक्ष्य सिद्ध हुआ ओ नरपशु, तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर रस में वनस्पति नहीं होंगी, शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुष्ठग्रस्त, सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सदा सदा के लिए होगा विलीन, या गेहूं की बालों में सर्प फुपकारेंगे, नदियों में बह बह कर आएगी पिघली आग। अश्वस्थामा, भस्म हो जाने दो, आने दो प्रलय व्यास, मैं देखूं रक्ष शक्ति कृष्ण की। व्यास, तो देख उधर, कृष्ण के कहने से पहले ही अर्जुन ने छोड़ दिया था नम में अपना ब्रह्मशास्त्र, लेकिन नराधाम ये दोनों ब्रह्मशास्त्र अभी नम में टकराएंगे, सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। फिर गड़गड़ाहट, तेज प्रकाश और फिर अंधेरा। अश्वस्थामा, मैं क्या करूं, मुझको विवश किया अर्जुन ने, मैं था अकेला और अन्यायी, कृष्ण पांडवों के सहित मेरा वध करने को आतुर थे, भयानक अर्तनाद। व्यास, अर्जुन सुनो, मैं हूँ व्यास, तुम व्यास ले लो ब्रह्मशास्त्र को, अश्वस्थामा अपनी कायरता से तू मत ध्वस्त कर मनुष्यता को, वापस ले अपना ब्रह्मशास्त्र और मणि देकर वन में चला जा। अश्वस्थामा, व्यास मैं अशक्त हूँ, मुझको है ज्ञात रीति केवल आक्रमण की, मुझे हटना मुझको या मेरे अस्त्रों को मेरे पिता ने सिखाया नहीं। व्यास, सूरज बुझ जाएगा धरा बंजर हो जाएगी। अश्वस्थामा, अच्छा तो सुन लो व्यास, सुन लो कृष्ण, यह अचूक अस्त्र अश्वस्थामा का निश्चित गिरे जाकर उत्तरा के गर्भ पर, वापस नहीं होगा भयानक विस्फोट। व्यास, तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। अश्वस्थामा विकट अट्टहास करता है। अश्वस्थामा, था मैं नहीं, मुझको युधिष्ठिर ने बना दिया। पर्दा गिराकर आगे का दृश्य, नेपथ में पांडव बंधु वधुओं का क्रंदन सुन पड़ता है। गांधारी और संजय आते हैं। गांधारी, चलते चलो संजय, क्रंदन यह कैसा है, सुनते हो? संजय, अश्वस्थामा का ब्रह्म शास्त्र जा गिरा है उत्तरा के गर्भ पर। गांधारी, करेगा वह अपना पणक पूरा करेगा। संजय, रुक कर माता, किंतु कृष्ण उसे क्षमा नहीं करेंगे। गांधारी, चलते चलो संजय, उसका वध नहीं कर सकेंगे कृष्ण। चक्र यदि कृष्ण का खंड खंड मुझको कर भी दे, तो मैं तो अभी जाऊंगी वहां जहां गहन मृत्यु निद्रा में सोया है दुर्योधन। चलते चलो संजय। जाते हैं धृष्टराष्ट्र और युत्सु का प्रवेश। धृतराष्ट्र, वत्स, तुम मेरी आयु लेकर भी जीवित रहो। अश्वस्थामा का ब्रह्मशास्त्र यदि गिरा है उत्तरा पर, तो कौन जाने एक दिन युधिष्ठिर सब राजपाट तुमको ही सौंप दें। युत्सु कटु हंसी हंसकर, और इस तरह अश्वस्थामा की पशुता मेरा खोया हुआ भाग्य फिर लौटा लाए। नहीं पिता नहीं, इतना ही दर्शन क्या काफी नहीं है इस अभागे को? पांडवों की जय ध्वनि सुन पड़ती है। विदुर आते हैं। धृतराष्ट्र, यह कैसी जय ध्वनि? विदुर, महाराज रक्षा कर ली उत्तरा की मेरी प्रभु ने। एक क्षण को स्तब्ध होकर धृतराष्ट्र, कैसे विदुर? विदुर बोले हुए, यदि यह ब्रह्मशास्त्र गिरता है तो गिरे, लेकिन जो मुर्दा शिशु होगा उत्पन्न, उसे जीवित करूंगा मैं देकर अपना जीवन। धृतराष्ट्र, अश्वस्थामा को क्या छोड़ दिया कृष्ण ने? विदुर, छोड़ दिया, केवल भ्रूण हत्या का शाप उसे दिया और उससे मणि ले ली। मणि लेकर देकर लेकर शाप खिन्न मन अश्वस्थामा नतमस्तक चला गया। युत्सु, जिस पर कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया लक्षित नहीं होती, मुझको आशंका है माता गांधारी, सुनकर पराजय अपने अश्वस्थामा की जाने क्या कर डाले। धृतराष्ट्र, चलो विदुर, आगे गई हैं वे, मैं भी धीरे धीरे आता हूँ। पहले तेजी से विदुर, फिर धृतराष्ट्र और युत्सु उधर जाते हैं और जिधर गांधारी गई हैं, पर्दा खुलकर अंदर का दृश्य, संजय, गांधारी और विदुर। संजय, यह वह स्थल है, यहीं कहीं हुए थे धाराशाही महाराज दुर्योधन, यही हैं स्वर्ण शीर स्त्राण, यही है गदा उनकी, यह है कवच उनका। गांधारी पट्टी उतार देती है, एक एक वस्तु को टटोल टटोल कर देखती है, कवच पर हाथ फेरते हुए रो पड़ती है। विदुर, माता धैर्य धारण करें, कवच यह मिथ्या था। केवल स्वयं किया हुआ मर्यादित आचरण कवच है जो व्यक्ति को बचाता है। माता, सासी गांधारी निपत की ओर देखती हैं। गांधारी, कौन है वह झाड़ी के पास मौन बैठा हुआ कोई जीवित व्यक्ति? विदुर, माता उधर मत देखें। गांधारी, लगता है जैसे अश्वस्थामा। संजय, नहीं नहीं, इतना कुरूप, अंग अंग गला कोढ़ से रोगी कुत्तों सा दुर्गंध युक्त। गांधारी, लौटा जा रहा है वह कौन है विदुर? रोको विदुर, माता उसे जाने दें, वह अश्वत्थामा है। दंड उसे दिया भ्रूण हत्या का कृष्ण ने, शाप दिया उसको कि जीवित रहेगा वह लेकिन हमेशा जख्म ताजा रहेगा। प्रभु चक्र उसके तन पर रक्त सना घूमेगा, गहन वनों में युग युगांतर तक अंगों पर फोड़े लिए गले हुए जख्मों से चिपटी हुई पट्टियां, पीप थूक कफ से सना जीवित रहेगा वह। मरने नहीं देंगे प्रभु, लेकिन अगणित रौरव की पीड़ा जगत रहेगी रोम रोम में। गांधारी, संजय उसे रोको, लोहा मैं लूंगी आज कृष्ण से उसके लिए। संजय, माता वह चला गया, आया था शायद विदा लेने। दुर्योधन के अंतिम अस्थि शेषों से गांधारी, अस्थि शेष तो क्या हुआ, पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का। विदुर, धैर्य धरो माता। गांधारी हृदय विदारक स्वर में, तो वह पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का। क्या है यह सब कुछ कृष्ण, तुमने किया है यह, सुनो आज तुम भी सुनो। मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूँ, कृष्ण सुनो। यदि तुम चाहते तो रुक सकता था युद्ध यह, मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल वह, इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया। क्यों नहीं तुमने वह शाप दिया भीम को, जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को। तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यदि मेरी सेवा में बल है, संचित तप में धर्म है, तो सुनो कृष्ण। प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। वंशी ध्वनि कृष्ण की छाया। प्रभु कृष्ण ध्वनि माता, प्रभु हूँ या परात्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योग क्षेम मैं वहन करूँगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूँ। करोड़ों बार जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशाही हुआ, कोई नहीं था वह मैं ही था। गिरता था घायल होकर जो रणभूमि में, अश्वस्थामा के अंगों से रक्त पीप स्वेद बन कर बहूंगा मैं ही। युग युगांतर तक जीवन हूं मैं, तो मृत्यु भी तो मैं ही हूं मां। शाप यह तुम्हारा स्वीकार है। गांधारी, यह क्या किया तुमने, फूट फूट कर रोने लगती है। रोई नहीं है मैं अपने 100 पुत्रों के लिए, लेकिन कृष्ण तुम पर मेरी ममता अगाध है। कर देते शाप यह मेरा तुम अस्वीकार, तो क्या मुझे दुख होता। मैं थी निराश, में कटु थी, पुत्र हीना थी। कृष्ण ध्वनि, ऐसा मत कहो माता, जब तक मैं जीवित हूँ पुत्र हीना नहीं हो तुम। प्रभु हूँ या परात्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। गांधारी रोते हुए, मैंने क्या किया विदुर, मैंने क्या किया। कथा गायन, स्वीकार किया यह शाप कृष्ण ने, जिस क्षण से उस क्षण से ज्योति सितारों की पड़ गई मंद। युग युग की संचित मर्यादा निष्प्राण हुई, श्रीहीन को हो गए कवियों के सब वर्ण छंद। यह शाप सुना सबने पर भय के मारे, माता गांधारी से कुछ नहीं कहा, पर युग संध्या की कलुषित छाया जैसा यह शाप सभी के मन पर टंगा रहा।